आगे सबक देखिए भाई। قال وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى يجب الحد عليها وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको मसला बतलाया था कि अगर एक शख्स के पास उसकी शादी के मौके पर किसी गैर औरत को उसके पास भेज दिया गया और औरतों ने बतलाया उसे कि ये तुम्हारी बीवी है और इस शख्स ने इस खबर पर एतमाद करते हुए इस औरत से सोहबत कर ली, तो फिर इस सूरत में इस शख्स पर हद जारी नहीं होगी। अलबत्ता इसको महर देना पड़ेगा क्योंकि ममलिकत इस्लामिया के अंदर कोई भी वती इन दो चीजों से खाली नहीं, या तो वहां हद आएगी या वहां महर आएगा। तो इस शख्स पर हद तो ना आई, अलबत्ता महर आ जाएगा। और नी साहिबे हिदाया ने यह भी बतलाया कि अब यह शख्स मोहसन न रहा, यानी यह जिना से पाक दामन न रहा, लिहाजा इस पर कोई जिना का इल्जाम लगाता है तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती। और फिर साहिबे हिदाया ने यह मसला भी बतलाया कि एक शख्स ने अगर अपने बिछौने पर किसी औरत को सोया हुआ पाया और इसने उसके साथ वती कर ली तो इस सूरत में इस पर हद जारी होगी क्योंकि यह इश्तेबाह का मकाम नहीं है। बीवी के साथ तवील अरसे तक साथ रहने की वजह से यहां किसी किस्म का इश्तेबाह नहीं हो सकता, और अगर इश्तेबाह था भी तो यह शख्स सवाल के जरिए अपने उस इश्तेबाह को दूर कर सकता था। और साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र किया कि एक शख्स ने एक ऐसी औरत से निकाह कर लिया जो उसकी महरम है, जिसके साथ उसका निकाह जायज ही नहीं है, और इसने उसके साथ सोहबत भी कर ली, तो इस आकद की वजह से यहां शुभा आ गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं चाहे यह शख्स जानता भी हो कि यह औरत मुझ पर हमेशा के लिए हराम थी, फिर भी आकद इसने किया है तो आकद की वजह से शुभा आ गया, लिहाजा इस शख्स पर हद जारी नहीं की जाएगी। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्ला और साहिबैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि यहां इस शख्स पर हद जारी की जाएगी जब इसको इलम हो कि इस औरत से निकाह मेरे लिए हराम है। वो फरमाते हैं वजह यह है कि ये जो आकदे निकाह इस शख्स ने किया ये अपने महल में नहीं है। आकदे निकाह का महल वो औरत होती है जो हलाल होने को कबूल कर ले, यानी जो आकदे निकाह की वजह से उस आदमी के लिए हलाल हो जाए, और ये औरत जो है ये तो इस आदमी की महरम है, यहां तो हलाल होने की कोई सूरत ही नहीं। तो अकदे निकाह ने अपने महल से मुलाकात न की, लिहाजा उस अकदे निकाह का कोई एतबार नहीं है, तो अब इस शख्स पर हद जारी की जाएगी। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अकदे निकाह ने अपने महल से मुलाकात की है, इसलिए क्योंकि अकदे निकाह जो है उस महल में किया जाता है जहां इस अकदे निकाह का मकसूद हासिल हो सके, और इस अकदे निकाह का जो मकसद है वो तो औलाद का हासिल करना है, नस्ल का बढ़ाना है। और ये जो औरत है जिसके साथ इसने निकाह किया है, अगरचे है इसकी महरम, लेकिन ये भी औरत है, मुअन्नस है, और इसके जरिए मकसूद निकाह हासिल हो सकता है। लेकिन यहां पर जो रुकावट आई है वो खास तौर पर इस मर्द की वजह से आई है कि ये इस औरत का महरम है। अगर इसके अलावा कोई और मर्द इस औरत से निकाह करता तो निकाह हो जाता। मालूम हुआ औरत जो है वो महल्ले निकाह है, तो यहां पर जो रुकावट आई वो खास तौर पर इस आदमी की वजह से आई है। तो मालूम हुआ हकदे निकाह ने अपने महल से ही मुलाकात की है, अलबत्ता एक मान्या आ गया जिसकी वजह से निकाह का हुक्म साबित नहीं होगा। तो बेशक निकाह का हुक्म साबित ना हो, लेकिन बहरहाल आकद ने तो अपने महल से मुलाकात की है, लिहाजा इसकी वजह से शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाया करती है, लिहाजा इस आदमी पर भी हद वाजिब नहीं होगी भाई। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स अजनबी या औरत के साथ शर्मगाह के अलावा के अंदर वती कर ले, मसलन रानों पर या पेट पर, तो फिर इस सूरत में उसने नापसंदीदा फेल किया है और इसकी वजह से इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शरीयत के अंदर इसकी कोई सजा मुकर्रर नहीं, लिहाजा यहां भी ताजीर की जाएगी, काजी उसको सख्त सजा देगा भाई। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है उसने किसी अजनबिया औरत के साथ पिछले मकाम में बदकारी की या किसी मर्द के साथ इसने बदकारी की, तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं इस शख्स पर हद नहीं है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यह फेल भी ये भी जिना की तरह है, लिहाजा इनको भी हद लगाई जाएगी भाई। और साहिबे हिदाया ने बतलाया कि इस सिलसिले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दो कौल हैं। एक कौल तो इनका साहिबैन के कौल के मुताबिक है, साहिबैन फरमाते इन दोनों पर हद जारी की जाएगी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी फरमाते इन पर हद जारी की जाएगी, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह का दूसरा कौल यह है कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा हर हाल में, चाहे ये मोहसन हो और चाहे गैर मोहसन हो। वो दलील जिक्र करते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है उक्तुलुल फाइल वल मफूला, के फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, और नीज हदीस में आता है फरजुमुल आला वल असफला, के ऊपर वाले को भी रजम कर दो और नीचे वाले को भी रजम कर दो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा, जबकि साहिबैन की दलील यह है कि ये दोनों फेल भी जिना के माना में हैं, ये दोनों फेल भी जिना के माना में हैं, इसलिए क्योंकि जिना इसे कहते हैं कि अपनी शहवत को ऐसे मकाम पर पूरा करना जो कामिल दर्जे का काबिले शहवत है, और नीज वो फेल महज फेल हराम हो और वहां सिर्फ शहवत का पूरा करना मकसूद हो और कोई मकसद ना हो। और ये तो इन दोनों के अंदर भी पाया जा रहा है, यानी औरत से ये जो बदकारी की है या मर्द के साथ जो बदकारी की है, इसके अंदर भी ये वाला माना पाया जा रहा है कि इसके अंदर भी शहवत पूरी की जा रही है एक ऐसे महल के अंदर जो कामिल तौर पर काबिले शहवत है, और ऐसे तरीके पर कि ये फेल महज हराम है और यहां मकसद जो है सिर्फ शहवत का पूरा करना है, तो ये फेल भी जिना के माना में है, लिहाजा इन पर भी हद जारी की जाएगी। इस पर साहिबैन पर इश्काल होता है, ये तो आप कियास के जरिए हद साबित कर रहे हैं, हालांकि हद तो अदना शुबे से भी साकित हो जाती है, उसको तो कियास के जरिए साबित नहीं किया जा सकता। तो उसका जवाब मैंने बतलाया था कि साहिबैन जो है वो कियास के जरिए यहां हद नहीं साबित कर रहे, बल्कि दलालतुन नस के जरिए, यानी नस उस पर दलालत कर रही है। वो जो नस आई थी अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जल्दा, मैंने आपको बतलाया था कि दलालतु नस उस इल्लत को कहते हैं जो नस से समझ में आए और आम अरबी जुबान जानने वाला भी उसको समझ ले, वहां किसी किस्म के गौर फिक्र की जरूरत न हो। जैसे कुरान में अल्लाह वालिदैन के बारे में फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ़िन, वालिदैन को उफ भी ना कहो। अब अरबी जुबान जानने वाला हर शख्स ये बात समझ लेता है कि यहां पर जो वालिदैन को उफ कहने से मना किया गया है उसकी इल्लत यह है कि इसकी वजह से वालिदैन को तकलीफ होगी। तो जब वालिदैन को उफ कहने से मना किया गया है तो वालिदैन को गाली देना या उनकी पिटाई करना बतरीके औला मना होगा, तो वालिदैन को गाली देना यह भी ममनू होगा और वालिदैन को मारना यह भी ममनू होगा। यह हुक्म किससे साबित हुआ? दलालतुन नस से, नस ने इस पर दलालत की है। नस से जब पता चला कि उफ कहना हराम है ममनू है क्योंकि इसकी वजह से वालिदैन को तकलीफ होती है, तो मालूम हुआ हर वो फेल ममनू होगा जिससे वालिदैन को तकलीफ हो, और जिसके अंदर इससे भी बढ़कर तकलीफ है वो तो बतरीके औला ममनू होगा भाई। तो दलालतुन नस उस इल्लत को कहते हैं जो अरबी जुबान के एतबार से नस से समझ में आए, वहां किसी गौर व फिक्र की जरूरत न हो। तो यहां पर भी साहिबैन ने ये जो औरत के साथ जो बदकारी की या जो मर्द के साथ जो बदकारी की है इसको जिना वाला हुक्म दिया है दलालतुन नस के जरिए कि नस इस पर दलालत कर रही है, क्योंकि नस के अंदर क्या आया अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जल्दा, मालूम है जिना करने वाले की यह सजा है। और जिना किसे कहते हैं? कि एक कामिल दर्जे के शहवत वाले मकाम में अपनी शहवत को पूरा करना इस तौर पर कि वो फेल महज हराम हो और वहां मकसद सिर्फ शहवत का पूरा करना हो और कोई मकसद ना हो भाई। और ये माना तो इन दोनों के अंदर भी पाया जा रहा है, तो ये भी जिना ही के माना में है, लिहाजा इनमें भी हद जारी की जाएगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये जिना नहीं है, क्योंकि अगर ये जिना होता तो सहाबा इसके अंदर इख्तिलाफ न फरमाते। हालांकि सहाबा में से बास कहते हैं कि ये फाइल और मफूल जो हैं इनको कत्ल कर दिया जाए और फिर आग से जला दिया जाए। बास फरमाते हैं कि इन पर ऊंची दीवार गिरा दी जाए ताकि ये उसके नीचे दब कर मर जाएं, और बास कहते हैं कि इनको ऊंची जगह से औंधे मुंह गिरा दिया जाए और फिर इन पर ऊपर से पत्थर गिरा दिए जाए ताकि ये खत्म हो जाए। तो अगर ये जिना होता तो सहाबा के अंदर इसकी सजा के मामले में इख्तिलाफ न होता, और नीज ये जिना के माना में भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जिना से मुख्तलिफ हैं। बई एतबार कि जिना के अंदर औलाद का जाया करना है, जिना से अगर औलाद हुई तो वो जाया होगी, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं होगा, और नीज जिना की वजह से नसब के अंदर इश्तिबा आ जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि यह किसकी औलाद है। जबकि इस बदकारी के अंदर तो ऐसा नहीं है, यहां पर बच्चों का जाया करना या इश्तबाहे नसब का इम्कान नहीं है। और नीज ये इस एतबार से भी ये फेल जिना से मुख्तलिफ हैं कि जिना जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो दाई है वो मर्द और औरत दोनों की तरफ से पाया जा रहा है, वहां शहवत दोनों की तरफ से है, जबकि ये जो है जिना के मुकाबले में कलील है, नादिर है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो दाई है वो सिर्फ एक जानिब से है, यानी सिर्फ फाइल की जानिब से दाई है जबकि मफूल की तरफ से दाई नहीं है, लिहाजा यह जिना के माना में भी नहीं है, लिहाजा यहां पर ताजीर ही जारी की जाएगी भाई। और बाकी वो जो हदीस के अंदर आया था कि फाइल और मफूल को कत्ल कर दो या उनको रजम कर दो, तो हम कहते हैं वो महमूल है सियासत पर कि हाकिम जो है सियासतन उनको कत्ल करवाना चाहे तो कत्ल कर सकता है, और या वो महमूल है हलाल समझने वाले पर, अगर कोई इस फेले लिवातत को हलाल समझता है तो वो तो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, लिहाजा उसको तो कत्ल किया जाएगा भाई। तो ये हदीस उनके बारे में है। उसके बाद हमने मसाला पढ़ा था कि अगर किसी शख्स ने चौपाए के साथ वती कर ली तो उस पर भी हद जारी नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि चौपाए के साथ वती करना यह जिना की तरह नहीं है, और नीज इसे तबीयत सलीमा नफरत करती है, और कोई इंतहाई शहवत की वजह से या इंतहा दर्जे की हमाकत की वजह से इस किस्म के फेल पर आमादा होता है, तो ये जब जिना की तरह नहीं है तो इसको जिना वाला हुक्म भी नहीं दिया जाएगा और इसको ताजीर की जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि हद जिना जारी करने के लिए पांच शर्तें हैं, पांच शर्तें पाई जाएंगी फिर ही हद जिना जारी की जाएगी, और वो पांच शर्तों में से पहली शर्त यह है कि जिना दारुल इस्लाम में हो, लिहाजा अगर बागियों के इलाके में या दारुल हर्ब के अंदर जिना हुआ हो तो उस शख्स पर हद जारी नहीं की जाएगी, चाहे वो यहां आकर इकरार ही क्यों ना कर ले फिर भी हद जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि इजराए हद जिना के लिए दारुल इस्लाम का होना शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि जिना के अंदर असल जो है वो मर्द है, तो वो जिना करने वाला मुकल्लफ होना चाहिए, और तीसरी शर्त यह है कि वो जिना रजामंदी से हो गई, लिहाजा अगर जबरदस्ती किसी से जिना करवाया गया तो वहां हद जारी नहीं होगी भाई। और चौथी शर्त यह थी कि दोनों जानिबों का इत्तेफाक हो उसके जिना होने पर, अगर दोनों में से एक भी कह दे कि हम दोनों ने तो निकाह किया था तो हद साकित हो जाएगी भाई। और पांचवीं शर्त जो है वो अमीर का होना है, यानी अमीर हो जो इस हद जिना को नाफिज करवाए, अगर किसी मकाम पर अमीर नहीं है तो हद जिना भी नाफिज नहीं की जा सकती जी। तो कितनी शर्तें हैं हद जिना के जारी करने की, पांच शर्तें हैं, पहली शर्त दारुल इस्लाम, दूसरा यह कि जिना करने वाला मुकल्लफ हो, तीसरी शर्त कि जिना जो है रजामंदी से किया जाए, और चौथी शर्त कि मर्द और औरत का इत्तेफाक हो इसके जिना होने पर, और पांचवीं शर्त यह है कि हद नाफिज करने वाला मुसलमानों का अमीर या खलीफा हो या उसका नाइब हो भाई। तो साहिब हिदाया ने मसला जिक्र किया था कि अगर किसी शख्स ने दारुल हर्ब के अंदर जिना किया या बागियों के इलाके के अंदर जिना किया और फिर वो निकलकर दारुल इस्लाम के अंदर आ गया तो इस पर हद जारी नहीं की जाएगी, चाहे ये हाकिम के सामने आकर इकरार ही क्यों ना कर ले कि मैंने वहां पर जिना किया था। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस पर हद जारी की जाएगी, इसलिए क्योंकि जब यह हमारे इलाके में आ गया मुसलमान होकर तो इसने अपने लिए इस्लामी अहकाम का इल्तिजाम कर लिया, अपने ऊपर इस्लामी अहकाम को लाजिम कर लिया, लिहाजा इस पर हद जारी की जाएगी। जबकि हम कहते हैं कि हदीस में आता है ला युकामुल हुदूद फी दारिल हर्बी, कि दारुल हर्ब के अंदर हुदूद कायम नहीं की जाएंगी, और दारुल हर्ब में हुदूद कायम न करने से मुराद यह है कि दारुल हर्ब में हुदूद वाजिब ही नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि यह बात जाहिर है कि दारुल हर्ब के अंदर तो हमारे खलीफा की हुकूमत ही नहीं है, वहां तो वो हद नाफिस करने पर कादिर ही नहीं है। फिर भी हदीस में कहा जा रहा है ला युकामुल हुदूद फी दारिल हर्बी, कि दारुल हर्ब में हुदूद को कायम नहीं किया जाएगा। मालूम है यहां कायम करने से कायम करना मुराद नहीं है बल्कि वजूब मुराद है कि दारुल हर्ब के अंदर हुदूद वाजिब नहीं होंगी भाई, और नीज इसलिए भी दारुल हर्ब के अंदर हद वाजिब नहीं होगी क्योंकि हद के वाजिब होने का मकसद यह है ताकि लोग उस जुर्म से रुक जाएं, उस जुर्म से बाज आ जाएं, और लोग उस जुर्म से तब ही बाज आएंगे कि जब उस हद को जारी भी किया जाए, उसको नाफिज भी किया जाए। अगर सिर्फ हद वाजिब हुई है और नाफिज नहीं किया जा सकता उसको, फिर तो हद के वाजिब होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो लिहाजा हद के वाजिब होने का फायदा उसी वक्त है जब उस हद को जारी भी किया जा सके, जब उस हद को नाफिज भी किया जा सके। लिहाजा चूंकि वहां तो हमारे खलीफा की हुकूमत नहीं है तो वहां हद नाफिज नहीं की जा सकती, जब नाफिज नहीं की जा सकती तो वजूब भी नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया और उसने किसी जिम्मिया के साथ जिना कर लिया, या दारुल हर्ब से एक हर्बी औरत जो है अमान लेकर दारुल इस्लाम में आई और उसके साथ किसी जिम्मी मर्द ने जिना कर लिया, तो फिर इस सूरत में हमारे अइम्मा का आपस में इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन चारों पर हद जारी की जाएगी, चाहे हर्बी मर्द है या औरत है, या जिम्मी मर्द है या जिम्मिया औरत है भाई। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर्बी मर्द और औरत पर तो हद जारी नहीं होगी, जिम्मी मर्द और जिम्मी औरत पर हद जारी होगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ जिम्मी मर्द पर हद जारी होगी और बाकी तीनों में से किसी पर भी हद जारी नहीं होगी, यानी हर्बी मर्द पर भी हद नहीं, हर्बी औरत पर भी हद नहीं, और जिम्मिया औरत पर भी हद नहीं है। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने हर एक के दलाइल जिक्र फरमाए थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वो तरफेन से इख्तिलाफ करते हैं हर्बी मर्द और हर्बी औरत के बारे में, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये हर्बी मर्द और हर्बी औरत ये भी जिम्मी की तरह हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि जिम्मी ने हमेशा के लिए यहां रहना है तो उसने हमेशा के लिए इस्लामी अहकाम का अपने ऊपर इल्तिजाम किया है, जबकि हर्बी मर्द और औरत जो हैं वो तो कुछ अरसे के लिए आए हैं, तो जितने अरसे के लिए आए हैं इस दौरान इस्लामी अहकाम का अपने लिए उन्होंने इल्तिजाम कर लिया, तो यह हर्बी मर्द और औरत भी जब तक ममलिकत इस्लामिया में है ये जिम्मी के दर्जे में है, और जिम्मी मर्द और औरत पर तो बिल इत्तेफाक हद जारी की जाती है, तो इस हर्बी मर्द और औरत पर भी हद जारी की जाएगी भाई। और उसके बाद फिर तरफेन की दलील आई थी, मैंने बतलाया था कि तरफेन का आपस में भी इख्तिलाफ है, अलबत्ता एक चीज में दोनों का इत्तेफाक है कि हर्बी मर्द और औरत पर हद नहीं आएगी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते हैं हर्बी मर्द और औरत पर भी हद आएगी, जबकि तरफेन फरमाते हैं हर्बी मर्द और औरत पर हद नहीं आएगी। तो पहले उनकी दलील जिक्र फरमाई साहिब हिदाया ने और बतलाया कि ये जो हर्बी मर्द और औरत दारुल इस्लाम में आए हैं ये यहां रहने के लिए नहीं आए कि आप इनको जिम्मियों वाला हुक्म दे दें, बल्कि ये अपनी हाजत और जरूरत की वजह से यहां आए हैं, और इसीलिए ये जिम्मी के हुक्म में नहीं है। जिम्मी का तो यह हुक्म है कि अगर उसको कोई कत्ल कर देता है तो कातिल को भी किसास में कत्ल किया जाएगा, हालांकि हरबी मर्द और औरत का यह हुक्म नहीं है। अगर इनको कोई कत्ल कर देता है, चाहे कोई मुसलमान कत्ल करे चाहे कोई जिम्मी कत्ल करे, उनको किसास के अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा। वजह यह कि हरबी मर्द और औरत जो है यह महफूजु दम नहीं है, अलत ताबीद यानी हमेशा के लिए यह महफूजु दम नहीं, यह थोड़ी देर के लिए हमने इनको अमान दिया है तो यह महफूजु दम हुए तो हैं लेकिन आरजी तौर पर हैं, जबकि इसके मुकाबले में मुसलमान और जिम्मी जो हैं वो तो महफूजु दम है अलत ताबीद, क्योंकि वह ममलिकत इस्लामिया में रहते हैं और ममलिकत इस्लामिया के हर बाशिंदे की जान और माल महफूज है भाई। तो लिहाजा अगर वो हरबी मर्द या औरत जो है किसी मुसलमान या जिम्मी को कत्ल करते हैं तो हरबी मर्द या औरत को तो किसासन कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान या जिम्मी इस हरबी मर्द या औरत को कत्ल करता है तो फिर इस मुसलमान या जिम्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो हरबी मर्द और औरत थे वो अलत ताबीद महफूजुद दम नहीं थे भाई। और नीज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने हमारे अहकाम को मानने का इल्तिजाम किया है, तो उसका भी जवाब दिया कि इन्होंने हमारे तमाम अहकाम के मानने का इल्तिजाम नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन अहकाम को मानने का इल्तिजाम किया है जिनके जरिए इनका मकसूद हासिल हो सके, ये जिस मकसद के लिए आए हैं इनका मकसद पूरा हो सके, और वो अहकाम वो हैं जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, वो अहकाम है जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, जबकि हद जिना ये तो हुकूकुल इबाद में से नहीं है, ये तो हक शरा है, लिहाजा हरबी मर्द और औरत पर हद जारी नहीं की जाएगी। और उसके बाद फिर तरफैन रहमहुमल्लाह में आपस में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिम्मी मर्द और जिम्मी औरत दोनों पर हद जारी की जाएगी, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ जिम्मी मर्द पर हद जारी की जाएगी, जिम्मी औरत पर हद जारी नहीं की जाएगी। और उसकी वजह और फर्क भी जिक्र फरमाया था साहिब हिदाया ने कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिना जो है असल के अंदर मर्द का फेल है और औरत जो है वो उसके ताबिअ है, लिहाजा अगर असल से हद साकित हो जाए तो ताबिअ से भी हद साकित हो जाएगी, और अगर ताबिअ से हद साकित हो तो असल से हद साकित नहीं होगी। चुनांचे जब हरबी मर्द ने जिम्मिया औरत के साथ जिना किया तो इस सूरत के अंदर हरबी मर्द से हद साकित हो गई, क्योंकि इसने हमारे तमाम अहकाम का इल्तिजाम नहीं किया, और जब असल यानी मर्द पर से हद साकित हो गई तो ताबिअ यानी जो जिम्मिया औरत है उससे भी हद साकित हो जाएगी। जबकि जब जिम्मी मर्द ने हरबिया औरत से जिना किया तो वहां पर हरबिया औरत से तो हद साकित हो गई, क्योंकि उसने हमारे तमाम अहकाम का इल्तिजाम नहीं किया, लेकिन ताबिअ पर से हद साकित हो जाए तो उसकी वजह से असल से हद साकित नहीं होगी, लिहाजा इस जिम्मी पर हद जिना जारी की जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी नजीर जो है अगर कोई बालिग जो है किसी सगीरा या मजनूना से जिना कर ले तो इस बालिग पर तो हद आएगी, जबकि सगीरा और मजनूना पर हद नहीं। तो देखो यहां ताबिअ से हद साकित हो गई लेकिन ताबिअ की वजह से असल यानी उस बालिग मर्द से हद साकित नहीं होगी, जबकि इसके मुकाबले में अगर एक बालिगा औरत जो है वो किसी बच्चे या मजनून को अपने ऊपर कुदरत दे दे तो बच्चा या मजनून जो है वो उन पर तो हद नहीं है, और जब उन पर हद नहीं है तो ताबिअ जो बालिगा औरत है इस पर भी हद नहीं आएगी भाई जी। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर यह जो हरबी ने फेल किया है वो भी जिना है, इसलिए क्योंकि कुफार भी हुरुमात के मुखातब हैं। मैंने आपको बताया था शरई अहकाम तीन किस्म के हैं, कुछ इबादात हैं, कुछ मामलात हैं और कुछ हुरुमात हैं। कुछ इबादात हैं, कुछ मामलात हैं और कुछ हुरुमात हैं, और सही कौल के मुताबिक ये जो कुफार हैं ये हुरुमात के मुकल्लफ हैं। जैसे मुसलमानों को हराम चीजों से रुकने का हुक्म है, इनको भी हराम चीजों से रुकने का हुक्म है। तो लिहाजा जैसे मुसलमान को जिना से रोका गया है, इसी तरह जिम्मी और हरबी को भी जिना से रोका गया है। तो हरबी की जो जिम्मिया के साथ जिना कर रहा है ये फेले जिना ही है भाई, क्योंकि जिना वो फेल है जिससे शरीयत ने मना किया हो और उसका करने वाला गुनाहगार हो। और यह सिफत इस हरबी के अंदर भी पाई जा रही है। एक तो इसके कुफर का गुनाह है और नीज ये हराम फेल कर रहा है, इसका भी इसको गुनाह मिलेगा और इसको दुगना आजाब मिलेगा भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ हरबी का जिम्मिया के साथ जो ये बदकारी वाला फेल है ये भी जिना ही है भाई। तो जिम्मिया का इस हरबी को अपने ऊपर कुदरत देना यह भी हद का बाइस है, इसलिए क्योंकि वो फेले जिना पर कुदरत दे रही है उसको
जी।
वो फेले जिना पर कुदरत दे रही है, लिहाजा यह हद दोनों पर आ गई। अलबत्ता फिर हरबी से यह हद साकित हो गई, इसलिए क्योंकि उसने हमारे तमाम अहकाम का इल्तिजाम नहीं किया है, तो सिर्फ जिम्मिया जो है उस पर हद जारी होगी जी। जबकि इसके मुकाबले में सबी और मजनून जो हैं वो तो मुकल्लफ ही नहीं है भाई, वो तो मुकल्लफ ही नहीं है, वो शरी अहकाम के मुखातब ही नहीं है, तो लिहाजा उनका जो फेल है वो जिना है ही नहीं। जब उनका फेल जिना नहीं है तो वो बालिगा औरत जिसने इस बच्चे और मजनून को अपने ऊपर कुदरत दी है उसने जिना की कुदरत नहीं दी, उसने बुरे फेल की कुदरत तो दी है लेकिन इसको जिना की कुदरत नहीं कहेंगे भाई। तो इस बालिगा ने बच्चे और मजनून को जो अपने ऊपर कुदरत दी है यह जिना की कुदरत नहीं है भाई। जब यह जिना की कुदरत नहीं है तो लिहाजा यहां पर इस बालिगा पर भी हद जारी नहीं होगी भाई। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जाब्ता भी मैंने जिक्र किया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि जिना के अंदर असल मर्द है, असल मर्द है। अगर मर्द पर हद आएगी तो औरत पर भी हद आएगी, लेकिन अगर मर्द पर हद ना आए तो औरत पर भी हद नहीं आएगी। लेकिन अगर मर्द पर हद आई और फिर किसी आरिज की वजह से साकित हो गई तो फिर इस सूरत के अंदर औरत से हद साकित नहीं होगी। तो यहां पर भी ये जो हरबी मर्द ने जिम्मिया औरत से जिना किया है तो हरबी मर्द पर अव्वलन हद वाजिब हुई और फिर आरिज की वजह से साकित हो गई, लेकिन जिम्मिया से साकित नहीं होगी, उस पर हद जिना जारी की जाएगी। तफसील समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال واذا زنى الصبي او المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها। भाई सूरत मसला ये कि एक बच्चे ने या एक मजनून ने एक औरत के साथ जिना किया और उस औरत ने उनको अपने ऊपर कुदरत दी, यानी औरत जो है उसने उस जिना के अंदर उनका साथ दिया, यानी यूं कहो औरत की रजामंदी इसमें शामिल थी। तो इस सूरत में कहते हैं किसी पर भी हद नहीं आएगी। वजह यह क्योंकि ये बच्चे और मजनून का फेल जिना नहीं कहलाता, तो इस औरत ने जिस फेल पर इनको कुदरत दी है वो फेल जिना नहीं है, लिहाजा ना उस मजनून और बच्चे पर हद है क्योंकि वो तो मुकल्लफ ही नहीं है, और इस औरत पर भी हद नहीं क्योंकि इसने फेल जिना पर कुदरत नहीं दी भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि इजराए हद के लिए पांच शर्तें हैं। पहली शर्त क्या थी कि दारुल इस्लाम हो, दूसरी शर्त कि वो फेल करने वाला यानी जिना करने वाला जो मर्द है वो मुकल्लफ होना चाहिए, तो यहां पर वो दूसरी शर्त मादूम है, बच्चा और मजनून ये तो मुकल्लफ नहीं है भाई। तो जब ये मुकल्लफ नहीं तो यहां हद भी नहीं आएगी। तो कहते हैं قال واذا زنى الصبي او المجنون بامرأة طاوعته, तावा युताबिउ मुतावातन का माना है किसी का साथ देना, फरमाबरदारी करना, यानी अपनी रजामंदी से कोई फेल करना। قال इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं व इदा जना सबी अविल मजनून बिमरअतिन तावातहु, कि जब जिना किया किसी बच्चे ने या मजनून ने बिमरअतिन तावातहु एक ऐसी औरत से जिसने इनका साथ दिया यानी रजामंदी से जिना किया, फला हद अलैहि वला अलैहा, तो न तो इस बच्चे और मजनून पर हद है, वला अलैहा और न उस औरत पर हद है। وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى, और इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुम अल्लाह फरमाते हैं यजिब الحد عليها, कि इस औरत पर हद वाजिब होगी। وهو روايه عن ابي يوسف رحمه الله, और यही एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह से भी। याद रखो ये और अगला मसला दोनों की आगे इकट्ठी दलील जिक्र करेंगे। ये पहली सूरत थी जिसमें जिना करने वाला नाबालिग बच्चा है या मजनून है और औरत जो है वो बालिगा है। अब इसका बरअक्स कर लें, जिना करने वाला मर्द जो है वो है बालिग आकिल और जिससे जिना किया वो नाबालिगा या मजनूना है। तो दोनों की दलीलें आगे फिर जिक्र फरमाएंगे। तो कहते हैं वह इन जना सही हुन, और अगर एक सही मर्द ने जिना किया, सही यानी आकिल बालिग ने जिना किया, भी मजनूनतिन औ सगीरतिन किसी मजनूना औरत से, औ सगीरतिन तुजामाउ मिसलुहा, सगीरतिन नकेरा है और तुजामाउ मिसलुहा ये इसके बाद फेल आ रहा है तो ये इसकी सिफत बनेगा। तो किसी आकिल बालिग मर्द ने जिना किया भी मजनूनतिन किसी मजनूना औरत से, औ सगीरतिन तुजा मऊ मिसलुहा या ऐसी नाबालिगा से कि उस जैसी से जिमा किया जा सकता है, कि उस जैसी से जिमा किया जा सकता है यानी बालिगा होने के करीब है। तो कहते हैं औ सगीरतिन तुजा मऊ मिसलुहा या ऐसी नाबालिगा के साथ कि उस जैसी के साथ जिमा किया जा सकता है यानी वो काबिले जिमा है, तो खुद दर्रजुल खास सतन तो हद लगाई जाएगी खास तौर पर उस आदमी को, यानी वो मजनूना या नाबालिगा पर तो हद नहीं लेकिन उस आदमी पर हद वाजिब होगी। वहादा बिल इजमा, और ये बिल इजमा है यानी इसमें हमारे अइमा का और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इत्तेफाक है भाई। लहुमा, अब दलील आ गई इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह की। ये लहुमा की हुमा जमीर किसको राजे है, पीछे किसका मजहब जिकर हुआ था, वकाला जुफर व शाफी रहिमहुमल्लाह यजिबुल हद अलैहा, तो ये जमीर उनको राजे है। तो कहते हैं लहुमा इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्नल उज़्रा मिन जानिबिहा ला युजिबु सुकूत अल हद मिन जानिबिही। इधर देखिए भाई, इमाम शाफी और इमाम जुफर हमला दलील जिक्र फरमाते हैं कि जब मर्द नाबालिगा या मजनूना के साथ जिना करता है तो बिल इत्तेफाक मर्द पर हद आती है। मालूम हुआ औरत की तरफ से अगर कोई उजर आ जाए तो उस उजर की वजह से मर्द से हद साकित नहीं होती, तो लिहाजा अगर मर्द की जानिब से कोई उजर आ जाए तो औरत से भी हद साकित नहीं होगी भाई। तो कहते हैं लहुमा इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन अल उज़्रा मिन जानिबिहा, कि औरत की जानिब से उजर का आना ला युजिबु सुकूत अल हद मिन जानिबिही, यह हद के साकित होने को साबित नहीं करता। मिन जानिबिही मर्द की जानिब से, यानी औरत की तरफ से उजर आ गया है वह नाबालिगा है या मजनूना है तो इसकी वजह से मर्द से हद साकित नहीं होती। तो कहते हैं अन्नल उज़्रा मिन जानिबिहा, औरत की जानिब से उजर जो है ला युजिबु सुकूत अल हद, ये सुकूत हद को साबित नहीं करता। मिन जानिबिही मर्द की जानिब से, फकदल उज़्रु मिन जानिबिही, तो इसी तरह वो उजर होगा जो मर्द की जानिब से आए। मर्द की जानिब से उजर आ गया यानी वो बच्चा है या नाबालिग है तो उसकी वजह से औरत से हद साकित नहीं होगी। वहादा लिअन्न कुल्ल मिन्हा मुआखदुम बिफ़िअलिही, और ये इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक जो है उसका मुआखजा किया जाएगा उसके अपने फेल की वजह से, हर एक का मुआखजा अपने फेल की वजह से होगा। बच्चा और मजनून तो मुकल्लफ नहीं है, उनसे तो हद साकित हो जाएगी लेकिन औरत तो मुकल्लफा है बालिगा है लिहाजा उस पर हद जारी की जाएगी। और इसी तरह मर्द ने नाबालिगा या मजनूना से सोहबत की है तो हर एक का मुआखजा होगा, वो नाबालिगा और मजनूना वो तो मुकल्लफ नहीं है लेकिन मर्द तो मुकल्लफ है लिहाजा उस पर हद जारी की जाएगी। यह माना है वहाजाली अन्न कुल्लम मिन्हुमा मुआखज़ुम बिफ़िअलिही, और यह इसलिए क्योंकि यह जानी और जानिया में से हर एक जो है उसका मुआखजा किया जाएगा उसके अपने फेल की वजह से। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। हमने क्या कहा था कि अगर जिना करने वाला नाबालिग है या मजनून है तो फिर औरत पर भी हद नहीं, और अगर जिना करने वाला बालिग है तो फिर उस पर हद आएगी। वलाना, और हमारी दलील यह है कि नफ़ेअल ज़िना यतहक्ककु मिन्हु, कि फेले ज़िना जो है वो मर्द की तरफ से पाया जाता है, फेले ज़िना मर्द से होता है यानी ज़िना करने वाला असल में मर्द है, औरत तो सिर्फ उसको कुदरत दे रही है इस फेल पर, इसीलिए मर्द को जानी कहते हैं और औरत को मजनीयह कहते हैं। मजनिया इसमें मफूल है भाई, जैसे रमा यरमी रमयन फहु रामिन, वरुमिया युर्मा रमियन फजा का मरमियुन, इसी तरह जना यजनी जिनन फहुआ जान इन वजूनिया युजना जिनन फदा का मजनीयुन, तो मजनीयुन इसमें मफूल है और ये मुअन्नस है तो गोलता भी साथ लगा देंगे मजनी यह भाई। तो जिना असल में मर्द का फेल है इसलिए उसको जानी कहते हैं, औरत का फेल नहीं है, औरत को मजनिया कहते हैं। और नीज इसी तरह मर्द को वाती कहते हैं, वती करने वाला, और औरत जो है वो महल्ले वती है उसको मौतुआ कहते हैं। तो वती किसका फेल? मर्द का। इसी तरह जिना भी किसका फेल? मर्द का। इस पर इश्काल होता है कि औरत को भी तो जानिया कहा जाता है, कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं अज़ानियतु वज़ानी, औरत को जानिया कहा गया है। तो साहिबे हिदायत आपको बतलाएंगे कि औरत को जो जानिया कहा जाता है वो मजाजन है भाई, हकीकत में वो जानिया नहीं है भाई। वलाना हमारी दलील यह है कि नफे अला जिना यतहक्ककु मिन्हु, कि फेले जिना जो है वो मर्द की तरफ से होता है, वह इन नमा ही महलुल फेली, और औरत जो है ये तो उस फेले जिना का महल है। वलिहादा युसम्मा हुआ वाती अं वजानिया, और इसीलिए इस मर्द को वाती और जानी कहा जाता है। वल मर अतु मौतू अतं व मजनीयम बिहा, और औरत को मौतुआ और मजनीयम बिहा कहते हैं। इला अन्नहा सुम्मियत जानियतन मजाजन, मगर यह कि औरत को भी जानिया कह दिया जाता है मजाजन, औरत को भी मजाजन जानिया कह दिया जाता है भाई। क्यों जानिया मजाजन क्यों कहते हैं, उसकी वजह भी जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वजह यह कि अरबी जुबान के अंदर कभी कभार मफूल के लिए भी इसमें फाइल वाला लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे कुरान के अंदर जन्नतियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं फी ईशतिन राजिया, फी ईशतिन राजिया, ईशा का माना है जिंदगी और राजिया का माना है राजी होने वाली। अब मुझे आप बताइए कि वो जिंदगी राजी होगी या जिंदगी वाले राजी होंगे? जिंदगी वाले राजी होंगे। तो यहां ये जो राजिया आया ये बमाने मर्जिया के है, जिंदगी मर्जिया होगी, पसंदीदा होगी, लेकिन उस पर मर्जिया के लिए इसमें फाइल इस्तेमाल कर लिया गया। मालूम हुआ कभी मफूल के लिए भी इसमें फाइल इस्तेमाल कर लिया जाता है भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहा सुम्मियत जानियतम मजाजन, मगर यह कि औरत को जानिया मजाजन कह दिया जाता है। तस्मियतन लिल मफूल बिस्मिल फाइल, मफूल को इसमें फाइल के साथ मौसूम करते हुए। कर राजियति फी मानल मर्जियति, जैसे राजिया जो है मर्जिया के माना में यह अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है। औलिकौन यहां मुसब्बिबतन बितमकीनी, सबब युसब्बिबु तस्बीब का माना है सबब बनना, या इस वजह से कि औरत जिना का सबब बनी है कि इसने जिना की कुदरत दी, अगर यह जिना की कुदरत न देती तो जिना न होता। तो चूंकि यह जिना का सबब बनी है लिहाजा इसी को जानिया कह दिया गया, क्योंकि बाज औकात सबब पर वही मुसबब वाला लफ्ज बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? यह सबब बनी है उस शख्स के जानी होने का, तो उस शख्स का जानी होना यह है मुसबब, और ये औरत क्या है? सबब। और कभी कभार सबब को वही मुसबब वाला नाम दे दिया जाता है भाई। ये माना है औलिकौनिहा मुसब्बिबतन बितमकीनी, यह इस वजह से कि ये औरत जो है वो सबब बनी है कुदरत देने की वजह से। फयतअल्लकुल हद्दु फी हक़िहा बितमकीनी मिन क़बीहिज़ ज़िना, जी यहां तक तो साहिब हिदायत ने इतना बतला दिया कि जिना असल में मर्द का फेल है और औरत जो है वह महल्ले जिना है, लिहाजा औरत पर हद तब आएगी जब वो किसी को जिना पर कुदरत दे। और मर्द इस औरत के साथ, कोई बालिग मर्द इस औरत के साथ जिना करता है तो मर्द का फेल है जिना और इस औरत ने जिना पर कुदरत दे दी तो दोनों पर हद आएगी। लेकिन अगर इसका बच्चा या नाबालिग जो है वो वती करता है तो बच्चा या नाबालिग जो है उसका फेल तो जिना नहीं कहलाता, उसका फेल तो जिना नहीं कहलाता, इसलिए क्योंकि जिना तो वो फेल है जिसे शरीयत ने मना किया है और जिसका करने वाला गुनाहगार होता है। और बच्चे और मजनून में तो ये सिफत नहीं, वो तो मुखातब भी नहीं है, उनको तो हुक्म भी नहीं है और नीज वो गुनाहगार भी नहीं। तो मालूम हुआ बच्चे और मजनून का फेल जिना नहीं, लिहाजा बच्चा और मजनून जो है उनको एक औरत अपने ऊपर कुदरत दे रही है तो ये फेले जिना पर कुदरत नहीं दे रही। जब ये फेले जिना पर कुदरत नहीं दे रही तो इस औरत पर हद भी वाजिब नहीं होगी। फर्क समझ में आया? तो कहते हैं फयतअल्लकुल हद फी हकीहा, लिहाजा हद का ताल्लुक होगा उस औरत के हक में बिद तमकीन, कुदरत देने से। किस चीज की कुदरत? मिन कबीह जिना, उस जिना की जो कबीह है। कबीह जिना, कबीह मुजाफ अजिना मुजाफुन इलै, और याद रखो ये सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की तरफ, वो जिना कबीह है। तो अरबी में बाज़ औक़ात सिफत को मौसूफ पर मुकदम करके उसकी तरफ इजाफत कर दी जाती है। तो इस औरत पर भी हद आती है, औरत पर भी हद आती है, लेकिन किस वक्त? जब वो जब जिना जैसे फेले कबीह पर किसी को कुदरत दे। तो कहते हैं फयतअल्लकुल हद फी हकीहा, तो हद का ताल्लुक होगा इस औरत के हक में बिद तमकीन मिन कबीह जिना, कबीह जिना पर कुदरत देने की वजह से। वह हुआ फिअलु मन हुआ मुखातबुम बिल कफी अनहु, अब बतला रहे हैं फेले जिना किसे कहते हैं। कहते हैं वह हुआ फिअलु मन, और जिना फेल है उस शख्स का कि हुआ मुखातबुम बिल कफी अनहु, कि उसको मुखातब किया गया है उससे रुकने के साथ कि तुम ये फेल न करो। जिना उस आदमी का फेल है जिसको शरीयत ने उससे रुकने का हुक्म दिया हो, यानी मुकल्लफ होना चाहिए जी। वो जिना करने वाला मुकल्लफ होना चाहिए क्योंकि उसको शरीयत ने जिना से रोका है। और यहां पर तो जिना करने वाला बच्चा या नाबालिग है, वो तो मुकल्लफ ही नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ फिअलु मन हुआ मुखातबुम बिलका फियान हु, और जिना जो है वो तो उस शख्स का फेल है कि जिसको मुखातब किया गया हो उस जिना से रुकने के साथ। वह मुसिमुन अला मुबाशरती ही, और वो गुनाहगार होता है अला मुबाशरती ही उसको सरंजाम देने पर। फेले जिना तो उस आदमी का फेल है जिसको उस फेले जिना से रोका गया है, और जो वो उस फेल को कर लेता है तो गुनाहगार होता है। और बच्चे के अंदर तो ये चीजें नहीं, वो तो शरीयत के अहकाम का मुखातब भी नहीं, और नीज वो ये फेल करता है तो वो गुनाहगार भी नहीं है भाई। तो कहते हैं वह मुसिमुन अला मुबाशरती ही, और वो शख्स जो है वो गुनाहगार होता है उस फेल के सर अंजाम देने पर। वह फिअलु सबी लैस बिहाज़िही सिफती, और बच्चे का फेल जो है वो तो इस सिफत पर नहीं है। फला युनातु बिहिल हद्दु, लिहाजा इस बच्चे के फेल पर हद का मदार नहीं होगा, इस बच्चे और मजनून के फेल पर हद का मदार नहीं होगा। तो कहते हैं फला युनातु बिहिल हद्दु, लिहाजा इस बच्चे और मजनून के फेल पर हद का मदार नहीं होगा। आगे देखिए काल वमन अकरहु सुल्तानु हत्ता जना फला हद अलैह, भाई अब वो तीसरी शर्त का बयान आ गया। मैंने आपको बतलाया था कि हद जिना के इजरा के लिए पांच शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि दारुल इस्लाम होना चाहिए, उसका बयान गुजर गया। दूसरी शर्त यह कि वो जिना करने वाला मुकल्लफ होना चाहिए, उसका बयान अभी अभी गुजरा। और अब तीसरी शर्त यह थी कि वो जिना अपनी रजामंदी से किया गया हो। तो अब अगर कोई किसी से जबरदस्ती जिना करवाता है तो फिर क्या इस सूरत में उस पर हद आएगी या नहीं? तो याद रखो इसमें इमाम जुफर, इमाम अबू हनीफा और साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इकराह चाहे बादशाह करे चाहे कोई और करे, हर हाल में हद आएगी। इकराह चाहे बादशाह करे, यानी बादशाह चाहे जबरदस्ती मजबूर करे किसी को और वो शख्स जिना कर ले, फिर भी हद आएगी। और अगर बादशाह के अलावा कोई और इकराह करता है फिर भी हद आएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इकराह करने वाला चाहे बादशाह हो चाहे कोई और हो, किसी सूरत में हद नहीं आएगी, क्योंकि जब इकराह आ गया मालूम हुआ इस शख्स की रजामंदी नहीं है भाई, लिहाजा इसको हद नहीं लगाई जाएगी। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इकराह बादशाह की तरफ से हो फिर तो यह मोतबर है, लिहाजा यह शख्स जिसने बादशाह के इकराह की वजह से जिना किया है इसको हद नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर इकराह किसी और ने किया है तो किसी और के इकराह का कोई एतबार नहीं है, लिहाजा इस शख्स को हद जिना लगाई जाएगी। तो कहते हैं قال امام محمد رحمه الله جامع صغير میں فرماتے ہیں ومن اکرہہ السلطان حتى زنا, اور جس کو بادشاہ نے مجبور کیا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا, فلا حد علیہ, تو اس پر حد نہیں ہے. وكان ابو حنیفہ رحمه الله تعالى يقول اولا, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله پہلے فرماتے تھے يحد, کہ اس کو حد لگائی جائے گی, بادشاہ بھی اکراہ کرے اور کوئی जिना कर ले तो उसको हद लगाई जाएगी। वह कौलु जुफर रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर का भी। इमाम जुफर भी फरमाते हैं बादशाह भी इकराह करे तो यह इकराह मोतबर नहीं, तो इस आदमी को हद लगाएंगे। और जब बादशाह का इकरा मोतबर नहीं तो किसी और का इकरा बतरीके औला मोतबर नहीं। लिहाजा इमाम जुफर के नजदीक कोई भी इकरा करे तो फिर भी हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं वह हुआ कौल जुफर रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्ला का। लिअन्ना ज़िना मिनर रजुली ला यकून इल्ला बाद इंतिशारिल आलती, कहते हैं लिअन्ना ज़िना मिनर रजुली, इसलिए क्योंकि ज़िना जो है मर्द की तरफ से ला यकून वो नहीं हो सकता इल्ला बाद इंतिशारिल आलती मगर उसके आलय तनासुल में इंतिशार के बाद, आलय तनासुल में इंतिशार आ जाए यानी सख्ती आ जाए उसके बाद ही ज़िना हो सकता है, उसके बगैर ज़िना नहीं हो सकता। और ये आले तनासुल में इंतिशार का आना ये जिना पर राजी होने की दलील है। मालूम हुआ ये फेल वो अपनी मर्जी से कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्ना ज़िना मिनर रजुली ला यकूनु इल्ला बाद इंतिशारिल आलती, कहते हैं इसलिए क्योंकि मर्द की तरफ से जिना नहीं हो सकता मगर इंतिशारे आला के बाद। वज़ालिका दलीलु तवाइयती, और ये इंतिशारे आला जो है तवाइयत की दलील है यानी साथ देने की दलील है कि वो रजामंदी से ये फेल कर रहा है। सुम्मा रजा अन्हु, फिर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने से रुजू फरमा लिया। फकाल ला हद अलैहि, तो फरमाया इस पर हद नहीं है जिसको बादशाह ने मजबूर किया है, इस पर हद नहीं है। लिअन्न सबबहुल मुलजिअ काइमुन ज़ाहिरन, मुलजिअ भाई अलजा युलजिउ इलजा का माना है किसी को मजबूर करना, इसलिए क्योंकि जब बादशाह ने मजबूर किया है तो वह सबब मुलजी मौजूद है। बादशाह या उसके आदमी तलवार लेकर सर पर खड़े हैं भाई, तो वो सबब जो इकराह पर मजबूर कर रहा है वो जाहिरन मौजूद है, लिहाजा इसके ये फेल जो है रजामंदी से नहीं है। तो कहते हैं लिअन्ना सबबहुल मुलजिअ काइमुन ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि वो सबब जो मजबूर करने वाला है काइमुन वो मौजूद है ज़ाहिरन ज़ाहिरी तौर पर। वल इंतिशारु दलील मुतरद्दिदुन, और आला तनासुल का इंतिशार जो है दलील मुतरद्दिदुन वो तो एक मुतरद्दिद दलील है, उस दलील में तरद्दुद है यानी उसमें रजामंदी के अलावा गैर का भी एहतमाल है, और जब गैर रजामंदी का भी एहतमाल वहां पर आ गया तो अब उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। तो कहते हैं वल इंतिशारु दलील मुतरद्दिदुन, और इंतिशारे आला जो है ये ऐसी दलील है जिसमें तरद्दुद है यानी जिसमें गैर का भी एहतमाल है। लिअन्नहु कद यकूनु मिन गैर कस्दिन, इसलिए क्योंकि इंतिशार कभी बगैर इरादे के भी होता है। लिअन्नल इंतिशार कद यकूनु तबअन ला तौअन, इसलिए क्योंकि इंतिशार जो है कभी कभार तबअन होता है ला तौअन रजामंदी के तौर पर नहीं होता बल्कि तबअन होता है। कमा फिन नाइमी, जैसे कि सोए हुए शख्स में है। फाओ रसा शुभहतन, तो इसने शुभा पैदा कर दिया। जब इंतिशार तबअन भी हो सकता है तो इस इंतिशार को साथ देने की दलील नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके दलील होने में शुभा आ गया। तो यह माना है फाओ रसा शुभहतन, तो इसने शुभा पैदा कर दिया। वह इन अकराहू गैरु सुल्तानी, और अगर इस शख्स को बादशाह के अलावा किसी और ने मजबूर किया है जिना पर, खुद दाइंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो इसको हद लगाई जाएगी इमाम साहिब के नजदीक। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं ला युहद्दु, इसको हद नहीं लगाई जाएगी। लिअन्नल इकराह इंदहुमा कद यतहक्कु मिन गैर सुल्तानी, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक इकराह जो है गैर बादशाह की तरफ से भी हो सकता है। लिअन्नल मुअस्सिर खौफुल हलाकी, इसलिए क्योंकि इकराह के अंदर वो चीज जो असर डालती है वो हलाकत का खौफ है। इकराह की वजह से एक आदमी एक फेल क्यों करता है, क्योंकि उसे हलाकत का खौफ होता है, और हलाकत का यह खौफ जैसे बादशाह की वजह से हो सकता है किसी और की वजह से भी हो सकता है। तो कहते हैं लिअन्नल इकराह इंदहुमा कद यतहक्कु मिन गैर सुल्तानी, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक मजबूर करना बादशाह के अलावा से भी हो सकता है। लिअन्नल मुअस्सिर खौफुल हलाकी, इसलिए क्योंकि वो चीज जो असर डालने वाली है वो हलाकत का खौफ है। वह अन्नहु यतहक्कु मिन गैरिही, और ये हलाकत का खौफ तो बादशाह के अलावा से भी हो सकता है। तो साहिबैन के नजदीक चाहे इकराह करने वाला बादशाह हो चाहे कोई और हो, दोनों सूरतों में एक राह मौजूद है, लिहाजा हद साकित हो जाएगी, क्योंकि हद के लिए, हद के लिए रजामंदी का होना जरूरी था भाई। वह लहू, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल इकराह मिन गैरिही ला यदूम इल्ला नादिरन, कि अन्नल इकराह मिन गैरिही, कि बादशाह के अलावा किसी और की जानिब से इकराह पाया जाए तो ला यदूम ये दायमी नहीं हो सकता, यानी लंबा नहीं हो सकता, इल्ला नादिरन, मगर नादिर तौर पर ही, यानी बादशाह के अलावा कोई और इकराह करे वो थोड़ी देर का इकराह हो सकता है, दायमी या तवील मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन इकराह हमीन गैर ही ला या दूम इल्ला नादिरन, के बादशाह के अलावा की तरफ से जो इकराह होगा वो दायमी यानी तवील नहीं हो सकता, इल्ला नादिरन, मगर नादिर तौर पर ही, लितमक्कुनी ही मीनल इस्तेआनति बिस्सुल्तानी औ बिजमाअतिल मुस्लिमीन। भाई इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि बादशाह के अलावा किसी और की तरफ से अगर इकराह हो भी तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ज्यादा देर के लिए नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं लितमक्कुनी ही मीनल इस्तेआनति बिस्सुल्तानी, इस वजह से कि यह शख्स कादिर है कि बादशाह से मदद तलब कर ले, और भी जमातिल मुस्लिमीन या मुसलमानों की जमात से मदद तलब कर ले, व तमक्कुनी ही दफ़अहू बिनफ्सी ही बिस्सलाही, और नीज ये शख्स इस बात पर कादिर है कि दफ़अहू बिनफ्सी ही कि वो खुद इस इकराह को दूर कर दे, बिस्सलाही असलहे के जरिए, गैर की तरफ से इकराह जो है वो तवील नहीं हो सकता, क्योंकि ये शख्स बादशाह से भी मदद मांग सकता है और अपने करीबी मुसलमानों से भी मदद मांग सकता है और खुद भी असलहे के जरिए इस इकराह को दूर कर सकता है। तो कहते हैं वह तमक्कुनी ही दफ़अहू बिनफ्सी ही बिस्सलाही, और इस वजह से कि यह शख्स कादिर है कि यह खुद भी उस इकराह को दूर कर दे असलहे के जरिए, वह नादिरु ला हुक्म लहू, और नादिर जो है उसका हुक्म नहीं होता, यानी गैर की तरफ से इकराह तवील नहीं हो सकता मगर नादिर तौर पर ही, और नादिर का तो कोई एतबार नहीं है। तो कहते हैं वह नादिरुल्ला हुक्म लहू, और नादिर जो है उसका तो कोई हुक्म नहीं होता, फला यस्कुत बिहिल हद, लिहाजा इस इकराह की वजह से हद साकित नहीं होगी, बेखिलाफ इस सुल्तानी, बखिलाफ बादशाह के, लिअन्नहु ला यमकिनुहु इस्तेआनतु बिगैरिही, इसलिए क्योंकि यहां उस आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वह दूसरों से मदद तलब कर ले, कोई दूसरा उसकी मदद के लिए नहीं आएगा बादशाह के खिलाफ भाई, तो यहां उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो दूसरों से मदद तलब कर ले, वलल खुरूज भी सलाह अलैही, और ये खुद भी असलहे के साथ उसके मुकाबले में नहीं निकल सकता, फफ्तारा का, तो दोनों में फर्क आ गया, सुल्तान और गैर सुल्तान जुदा हो गए, दोनों के इकराह मुख्तलिफ हैं। तर्जमा समझ में आ गया, फिर तर्जमा देख लीजिए, बिखिलाफ इस सुल्तानी, बखिलाफ बादशाह के, लिअन्नहु ला यमकिनुहु इस्तेआनतु बिगैरिही, इसलिए क्योंकि इस शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि बादशाह के अलावा किसी और से मदद तलब करे, क्योंकि कोई भी बादशाह के मुकाबले में मदद के लिए नहीं आएगा, और नीज वलल खुरूज बिस्सलाह अलैही, और इस शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि असलहे के साथ बादशाह के खिलाफ निकले, फफ्तारका, तो बादशाह और गैर बादशाह जुदा हो गए। और याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि जो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, इमाम साहब फरमाते हैं इकराह सिर्फ बादशाह की तरफ से हो सकता है, किसी और की तरफ से नहीं, और साहिबैन फरमाते हैं इकराह किसी की तरफ से भी हो सकता है। तो उलमा फरमाते हैं यहां जो साहिबैन और इमाम साहब के इख्तिलाफ है वो कोई दलाइल की वजह से इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये जमाने का इख्तिलाफ है। इमाम साहब का जमाना ऐसा था कि उसके अंदर बादशाह के अलावा कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था किसी पर इकराह का, किसी पर जुल्म करने का, जबकि साहिबैन का जमाना देखो इमाम साहब के जमाने के करीब ही है, साथ ही है, लेकिन थोड़ा सा ही जमाना गुजरा तो इतना फर्क पड़ गया कि उनके जमाने में बादशाह के अलावा कोई और भी इकराह कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने कहा बादशाह के अलावा कोई और भी इकराह कर सकता है, और हमारे जमाने में, हमारे जमाने में तो कोई भी इकराह कर सकता है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वमन अकर अरबा मर्रातिन फी मजालिस मुख्तलिफतिन अन्नहु जना बिफुलानता वकालत हिया तजव्वजनी औ अकर्रत बिज़िना वकाल अर्रजुलु तजव्वजतुहा फला हद्द अलैही व अलैहिल महरु फी ज़ालिक। अब भाई वो चौथी शर्त का बयान आ गया। इजराए हद के लिए चार शर्तें थी, पहली शर्त कि दारुल इस्लाम हो, दूसरी शर्त कि जिना करने वाला मुकल्लफ हो, तीसरी शर्त कि रजामंदी हो, और चौथी शर्त कि दोनों का उस फेल के जिना होने पर इत्तेफाक हो। अगर दोनों में से एक भी कह देता है कि मैंने तो जिना नहीं किया, मैंने तो निकाह किया था, तो उसकी वजह से शुबा आ गया और हद शुबे की वजह से साकित हो जाती है, लिहाजा हद साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वमन अकर अरबा मर्रातिन फी मजालिसा मुख्तलिफतिन। सूरत मसला ये कि एक शख्स ने चार मुख्तलिफ मजलिसों में इकरार किया कि मैंने फुलानी औरत से जिना किया है। चार मजलिसों को जिक्र किया क्योंकि आप जानते हैं कि इकरार वाले की हर मजलिस अलग होनी चाहिए, फिर ही उसके चार इकरार शुमार होंगे। तो उसने चार अलग मजलिसों के अंदर इकरार किया कि मैंने फुलानी से जिना किया है, लेकिन वो फुलानी औरत से पूछा गया तो उसने कहा मैंने तो इससे निकाह किया है। तो याद रखो इस सूरत में हद साकित हो जाएगी जी। औरत पर भी हद नहीं और मर्द पर भी हद नहीं। भाई मर्द पर क्यों नहीं हद आएगी, उसने चार मजलिसों के अंदर ही करार किया है कि मैंने जिना किया है। कहते हैं वजह यह कि दोनों एक ही फेल के बारे में बयान कर रहे हैं, वो मर्द और औरत। मर्द उसको जिना कह रहा है और औरत उसको निकाह कह रही है, लिहाजा जब एक ही फेल की वजह से औरत पर हद नहीं आ रही तो मर्द पर भी हद नहीं आ सकती। तो कहते हैं वमन अकर्रा अरबा मर्रातिन फी मजालिसा मुख्तलिफतिन, और जिस शख्स ने चार मर्तबा इकरार किया मुख्तलिफ मजलिसों में, फी मजालिसा मुख्तलिफतिन, याद रखो मजालिसा मुख्तलिफतिन ये मौसूफ सिफत है, मजालिस ये मौसूफ है और मुख्तलिफतिन उसकी सिफत है, क्योंकि जमा बतावील जमातुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है भाई, और इन पर फी दाखिल हो रहा है। अलबत्ता मजालिस पर कसरा नहीं आया क्योंकि गैर मुनसरिफ है, ये जमा मुंतहल जुमुअ का वजन है और ये खुद दो सबबों के कायम मकाम है। तो ये मजालिस का लफ्ज मजरूर है, अलबत्ता इसका जर आता ही फतहा की सूरत में है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और जबकि मुख्तलिफतिन उस पर जर आएगा क्योंकि वो तो गैर मुनसरिफ नहीं है भाई। तो कहते हैं वमन अकर अरबा मर्रातिन फी मजालिसा मुख्तलिफतिन, और जिस शख्स ने मुख्तलिफ मजलिसों में चार मरतबा इकरार किया कि अन्नहु जना बि फुलानता, कि इसने फुलानी औरत से जिना किया है, बि फुलानता, यहां ये तनवीन नहीं आएगी क्योंकि ये भी गैर मुनसरिफ है। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि फुलानतो का लफ्ज गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये फुला और फुलानतो ये किनाया होते हैं किसी अलम से, तो ये अलम के दर्जे में है। तो यहां दो सबब आ गए, फुलानतो के अंदर एक तो अलमियत आ गई क्योंकि अलम के दर्जे में है, और दूसरी तानीस आ गए, तो ये गैर मुनसरिफ है भाई। और हवाला भी मैं जिक्र करता हूं क्योंकि बाज औकात कोई इश्काल कर दे। याद रखना काफिया की मशहूर और मारूफ शरह है अल्लामा रज़ी की, तो काफिया के अंदर जहां मारिफा और नकिरा की बहस आती है वहां पर अल्लामा रज़ी ये बात जिक्र फरमाते हैं कि ये फुला और फुलाना तो जो है ये मारिफा है भाई, और कहते हैं इसीलिए इन पर अलिफ्लाम भी दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से ही मारिफा है, तो इन पर अलिफ्लाम लाने का कोई फायदा नहीं, तो इन पर अलिफ्लाम भी दाखिल नहीं होता, और नीज ये फुलाना तो ये गैर मुनसरिफ है, इस बात को भी वो जिक्र फरमाते हैं भाई। तो कहते हैं कि एक शख्स ने इकरार किया चार मजलिसों में कि अन्नहु जना भी फुलाना था, कि उसने फुलानी औरत से जिना किया है, वकालत हिया, और वो औरत कहती है ताजा हुआ जानी कि इस आदमी ने मुझसे निकाह किया है, वकालत हिया, याद रखो ये जो हिया है ये कालत के लिए फाइल है भाई, या यूं कहें कि ये फाइल मानवी है, कालत के अंदर हिया जमीर वो मुअक्कद और हिया जमीर उसकी ताकीद है। तो वकालत हिया, और वो औरत कहती है तज़व्वजनी कि इस आदमी ने तो मुझसे निकाह किया है, अव अकर्रत बिज़्ज़िना, या वो औरत जिना का इकरार करती है, वकाल अर्रजुल तज़व्वजतुहा, और मर्द कहता है कि मैंने तो इसे निकाह किया है, फला हद अलैही, तो इस शख्स पर हद नहीं है, व अलैहिल महर फी ज़ालिका, और इस मर्द पर महर वाजिब है इसमें, यानी दोनों सूरतों में इस आदमी को महर देना पड़ेगा, हद तो नहीं आएगी लेकिन ममलिकत इस्लामिया के अंदर जो भी वती हो वो हद या महर से खाली नहीं, हद नहीं आई तो महर आ जाएगा। तो कहते हैं वालैहिल महरु फी ज़ालिका, और इस आदमी पर महर होगा इस सूरत में, यानी ये दोनों सूरतों में, लिअन्न दावन निकाह यहतमिलु सिदका, इसलिए क्योंकि निकाह का जो दावा है वो भी सच का इहतमाल रखता है, दोनों में से एक ने निकाह का दावा कर दिया तो ये भी सच का इहतमाल रखता है, वह हुआ यकूमु बित्तरफैन, और निकाह जो है वो तो दोनों के साथ कायम होता है, निकाह तो दोनों के साथ कायम होता है, निकाह तो मर्द और औरत के दरमियान होता है, तो इसका ताल्लुक दोनों से है भाई। फाउरसा शुभहतन, तो इस दावे ने दूसरे के दावे में शुभा पैदा कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह इदा सकतल हद्दु, और जब हद साकित हो गई, व जबल महरू, तो महर वाजिब हो गया। ताजीमन लिखतरिल बुज़ई, बुज़ुन मैंने आपको बतलाया था कि फर्जुल मरआ को कहते हैं भाई, औरत की शर्मगाह को। ताजीमन लिखतरिल बुज़ई, खतर कहते हैं हुर्मत और एहतराम को भाई। तो कहते हैं वह इदा सकतल हद्दू, और जब हद साकित हो गई, व जबल महरू, तो महर वाजिब हो गया। ताजीमन लिखतरिल बुज़ई, बुज़ा की हुर्मत की ताजीम के तौर पर, कि बुज़ा क्या है? एक इंसानी उज्व है, और इंसान को अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया है, तो हर इंसानी उज्व भी मुअज़्ज़ज़ है, लिहाजा बुज़ा भी एक मुअज़्ज़ज़ उज्व हुआ, लिहाजा इसकी ताजीम के तौर पर महर वाजिब होगा। कि हद तो नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल जुर्माने के तौर पर, जुर्माने के तौर पर महर वाजिब हो जाएगा भाई। आगे देखिए, वह मंजना भी जारियतिन फकत अल्लाह फइन नहु युहद्दु अलैहिल कीमा। जी ये मुश्किल मसला है भाई, तवज्जो से सुनिए। सूरत है मसला ये कि एक शख्स ने एक बांदी से जिना कर लिया, और फिर उस फेले जिना से ही वो बांदी हलाक हो गई। तो इस सूरत में इस आदमी के दो जुर्म हो गए, एक इसने जिना किया है तो इसको हद भी लगाई जाएगी, और दूसरा इसने इस बांदी को हलाक किया है, लिहाजा अब इसके जिम्मे बांदी की कीमत है, ये बांदी के मालिक को अदा करेगा। तो कहते हैं वह मन जना भी जारियतिन, और जिस शख्स ने किसी बांदी से जिना किया, फकतलहा, तो इसने उसको कत्ल कर दिया, फइन्नहु युहद्दु, तो इस आदमी को हद लगाई जाएगी, व अलैहिल कीमतु, और इस आदमी पर उस बांदी की कीमत वाजिब होगी, मानाहु। अब साहिब हिदायत यहां से इस कौल का माना बयान कर रहे हैं, इसकी वजाहत कर रहे हैं कि बांदी से जिना किया और उसे कत्ल कर दिया, इसका क्या माना साहिब हिदायत बतलाएंगे। माना यह है कि पहले जिना ही के जरिए उसको कत्ल किया है। कहते हैं मा ना हो, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इस कौल का माना यह है कि कतलहा बिफ़िअल ज़िना, कि इस शख्स ने फ़िले ज़िना के जरिए ही से कत्ल किया है। अब इल्लत बयान करने लगे हैं, मतन में आया था इस आदमी पर हद भी होगी और इसको बांदी की कीमत भी देना पड़ेगी, तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लिअन्नहु जना जिनायतैनी, इसलिए क्योंकि इस आदमी ने दो जुर्म किए हैं, फयुवफ़रु अला कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा हुक्मुहु, वफ़्फ़रा युवफ़िरु तौफ़ीर का माना है किसी को उसका पूरा हिस्सा देना, किसी को उसका पूरा हक अदा करना। तो यहां इसने दो जुर्म किए हैं, लिहाजा हर जुर्म को उसका पूरा हुक्म दिया जाएगा। एक जुर्म जिना है, उसकी वजह से हद आएगी, और दूसरा जुर्म बांदी का कत्ल है, लिहाजा उसकी वजह से उस बांदी की कीमत अदा करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई? आपके जहन में यह ना आए कि इस आदमी को भी किसासन कत्ल किया जाएगा। नहीं भाई, किसासन कत्ल वहां होता है जहां कोई शख्स दूसरे को आलाय कत्ल से कत्ल करे, यानी उसे गोली मार दी या उसे तलवार वगैरह के जरिए कत्ल किया, तो फिर वहां किसास आता है, और सूरतों के अंदर तो दियत आया करती है, और ये बांदी है तो यहां बांदी की कीमत आएगी भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु जना जिनायतैनी, इसलिए क्योंकि इस शख्स ने दो जुर्म किए हैं, फयुवफ़रु अला कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा हुक्मुहु, लिहाजा इन दोनों जुर्मों में से हर एक जुर्म को उसका पूरा हुक्म दिया जाएगा। वअन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह अन्नहु ला युहद्दु, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि इसको हद नहीं लगाई जाएगी, लिअन्न तकर्रुरा ज़मानिल क़ीमति सबबुन लिमिल्किल अमति। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जब बांदी का जमान अदा कर देगा तो ये बांदी का मालिक बन गया, बांदी का, इसलिए क्योंकि इसने कीमत अदा करनी है बांदी की, तो जब ये जमाने कीमत अदा करेगा, किसी चीज की जब कीमत अदा कर दी जाए तो इंसान उसका मालिक बन जाता है, तो यहां पर भी ये शख्स बांदी का मालिक होगा। और किस वक्त से मालिक होगा? जिस वक्त बांदी हलाक हुई थी। और याद रखो, हद कायम होने से पहले अगर इंसान उस माल का मालिक बन जाए तो फिर हद साकित हो जाती है। मसलन एक शख्स ने चोरी की है और चोरी काजी के पास साबित भी हो गई, चोरी काजी के पास साबित भी हो गए। और आप जानते हैं हज जो है अल्लाह का हक है, किसी को इसमें सफारिश करने की या माफ करने की इजाजत नहीं है। तो काजी के पास चोर की चोरी साबित हो गई, लेकिन अभी चोर का हाथ नहीं काटा गया था कि वो जो मालिक था जिसकी चोरी हुई थी, उस मालिक ने वो सामान चोर को हिबा कर दिया कि तुम इसके मालिक हो गए। तो याद रखो, यहां हद जारी होने से पहले चोर उस माले मसरूक का, उस चोरी शुदा माल का मालिक बन गया, तो हद साकित हो जाएगी। तो मालिक ने इसे हिबा कर दिया, तो इस मालिक होने की निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी जब इसने यह सामान उठाया था, चोरी किया था, गोया उस वक्त से ही यह मालिक है, गोया इसने अपना ही माल उठाया था, तो लिहाजा हद साकित हो गई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं जब ये बांदी की कीमत देगा जमान के तौर पर तो ये बांदी का मालिक बन गया, जब मालिक बन गया हद कायम होने से पहले ही, तो फिर इस सूरत में हद साकित हो जाया करती है भाई। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अन्नहु ला युहद, अरे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसको हद नहीं लगाई जाएगी, ले अन्न तकर्रुर ज़मान अल-क़ीमती, इसलिए क्योंकि कीमत के जमान का साबित होना सबबुन लिमिल्क अल-अमती, यह सबब है बांदी की मिल्कियत का। तर्जमा समझ में आ रहा है, ले अन्न तकर्रुर ज़मान अल-क़ीमती, इसलिए क्योंकि जमान कीमत का साबित हो जाना सबबुन लिमिल्क अल-अमती, ये बांदी की मिल्कियत का सबब है। फसार कमा इदश्तराहा बादमा जना बिहा, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इसने इस बांदी को खरीद लिया हो, बादमा जना बिहा, बाद इसके साथ जिना करने के। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे एक शख्स एक बांदी से जिना करे और फिर हद कायम होने से पहले उस बांदी को खरीद ले। तो इस सूरत में भी याद रखो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है तरफेन से, तरफेन फरमाते हैं कि हद आएगी, इसने बाद में खरीदा है, जिस वक्त इसने जिना किया था उस वक्त तो ये इस बांदी का मालिक नहीं था, लिहाजा तरफेन फरमाते हैं इस आदमी पर हद आएगी जिसने बांदी को जिना के बाद खरीदा है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस आदमी पर हद नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी तवज्जो है, मसला जिक्र हो रहा है कि एक शख्स ने बांदी से जिना किया और उसी से वो मर गई, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये उस बांदी की कीमत दे देगा, जब कीमत दे देगा तो हद भी साकित हो गई। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स किसी बांदी से जिना करे और फिर हद कायम होने से पहले उसको खरीद ले, तो जब हद से पहले मालिक बन गया तो वो हद साकित हो जाएगी, जबकि तरफेन फरमाते हैं कि नहीं, हद साकित नहीं होगी भाई। तो कहते हैं फसारा कमा इदश्तराहा बादमा जना बिहा, तो ये इसी तरह हो गया जैसे इस शख्स ने बांदी को खरीद लिया हो उसके साथ जिना करने के बाद। वह हुआ अला हादल इख्तिलाफी, और ये मसला भी इसी इख्तिलाफ पर है, यानी इसमें भी ये जो बांदी खरीदने वाला मसला है इसमें भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और तरफेन का इख्तिलाफ है भाई। वातेराज उस सबबिल मिल्की कबला इकामतिल हदी यूजिबु सुकूतहू, अभी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है कि यहां पर ये शख्स जो है बांदी की कीमत अदा करेगा बतौर जमान के, तो लिहाजा ये हद के कायम होने से पहले ही मालिक बन गया, जब मालिक बन गया तो अब हद साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वातेराज उस सबबिल मिल्की, और मिल्कियत के सबब का पेश आ जाना कबल इकामतिल हदी, हद के कायम करने से पहले, यू जिबु सुकूतहू, ये उस हद के साकित होने को साबित करता है। हद लगने से पहले अगर मिल्कियत का सबब पेश आ जाए तो यह हद को साकित कर देता है। तो कहते हैं वायतराज उस सबबिल मिल्की कबला इकामतिल हदी, और हद कायम करने से पहले मिल्कियत का सबब पेश आना, यूजिबु सुकूतहू, ये साबित करता है हद के साकित हो जाने को। कमा इदा मलकल मसरूका कबल अलकतई, जैसे कि चोर जो है वो उस मसरूका सामान का मालिक बन जाए कबल अलकतई, हाथ काटने से पहले भाई। तो जैसे चोर अगर मसरूका माल का मालिक बन जाए हाथ कटने से पहले, तो फिर बिल इत्तेफाक हद साकित हो जाती है। तो यहां पर भी हद से पहले सबबे मिल्कियत आ गया तो हद साकित हो जाएगी। वलहुमा, और तरफेन की दलील यह है कि अन्नहु जमानु कत्लिन फला यूजिबुल मिल्क लिअन्नहु जमानु दमिन, तरफेन फरमाते हैं कि हमें आपकी यह बात तस्लीम नहीं है कि यह जमाने कीमत है, ये जो बांदी की कीमत अदा कर रहा है ये जमाने कीमत नहीं है, बल्कि हम कहते हैं ये जमाने कत्ल है। जमाने कीमत वो होता है जिसमें आदमी दूसरी चीज का मालिक बन जाता है, लेकिन यहां तो बांदी हलाक हो चुकी है, इसके मालिक कैसे बन सकता है अब ये? तो ये जो जमान दे रहा है ये जमाने कीमत नहीं है बल्कि ये जमाने कत्ल है भाई। कहते हैं वलहुमा तरफेन की दलील ये है कि अन्नहु ज़मानु क़त्लिन, कि ये ज़माने क़त्ल है ज़माने क़ीमत नहीं। फला यूजिबुल मिल्का, लिहाजा ये मिल्कियत साबित नहीं करता, क्योंकि मुर्दा बांदी वो तो मिल्कियत का महल ही नहीं है। तो कहते हैं ये ज़माने क़त्ल है, फला यूजिबुल मिल्का, तो ये मिल्कियत को साबित नहीं करता। लिअन्नहु ज़मानु दमिन, इसलिए क्योंकि ये खून का जमान है यानी कत्ल का जमान है। वलौ कान यूजिबुहु, यहां से तस्लीमी जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब क्या कि यह जमाने कीमत है, यह बात हमें तस्लीमी नहीं है बल्कि यह जमाने कत्ल है भाई। और अब तस्लीमी जवाब दे रहे हैं कि अगर हम आपकी बात मान भी लें कि यह जमाने कीमत है, तो फिर भी जो जमाने कीमत देगा तो यह बांदी का मालिक बनेगा। तो इस मिल्कियत की निस्बत की जाएगी उस हलाकत के वक्त की तरफ जिस वक्त बांदी हलाक हुई थी, लेकिन जिना तो बांदी की हलाकत से पहले ही हो चुका है, लिहाजा उस जिना के वक्त में इसकी मिल्कियत साबित नहीं हुई। लिहाजा अगर इसको जमाने कीमत भी मान लिया जाए फिर भी हद साकित नहीं होती, क्योंकि हद तो हलाकत से पहले ही साबित हो चुकी है भाई, और मालिक तो यह हलाकत के वक्त बना है भाई। भाई याद रखो, मैंने आपको बतलाया था कि जो सिफात हैं, चीजों की जो सिफात हैं, इनमें तजद्दुद होता रहता है, हर हर लम्हे के अंदर नई सिफत आ रही है। मसलन ये जो चीजों का रंग है, ये रंग भी एक सिफत है इनकी, और उलमा फरमाते हैं कि सिफात के अंदर तजद्दुद होता है, सिफात के अंदर बका नहीं, हर हर लम्हे में नई सिफत आ रही है। या दूसरी मिसाल ले लो, जैसे एक घर की रिहाइश है, कोई आदमी घर को किराए पर देता है और उस किराया वसूल करता है, यह किराया इवज है उस रिहाइश का, और यह रिहाइश घर की सिफत है और सिफत के अंदर बका नहीं। जो जो वक्त गुजर रहा है घर की रिहाइश गुजरती जा रही है, क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है कि सारा साल अपना घर किराए पर नहीं देता बल्कि उसकी रिहाइश को जमा करता जाए और फिर साल के आखिर में इकट्ठी वो सारी रिहाइश किराए पर दे दे? तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उस घर की रिहाइश, यानी यूं कहो उस घर के मुनाफे गुजरते चले जा रहे हैं, क्योंकि रिहाइश क्या है? सिफत है, ये मुनाफे हैं और मुनाफे के अंदर बका नहीं। जात के अंदर तो बका होती है, एक पत्थर आपके सामने आज पड़ा है, 10 दिन बाद भी ये पत्थर उसी तरह है, क्योंकि ये एक जात है, जात के अंदर तो बका होती है लेकिन सिफात के अंदर बका नहीं है। तो लिहाजा अगर हम इसको जमाने कीमत भी मान लें तो फिर भी हलाकत के वक्त ये बांदी का मालिक बना है, और हलाकत से पहले ही ये मुनाफे वसूल कर चुका है, और उन मुनाफे के वक्त तो ये मालिक नहीं था, लिहाजा उस वक्त तो हद साबित हो गई थी, तो वो हद अब साकित नहीं होगी, ये तरफेन फरमाते हैं भाई। तो कहते हैं वलौ काना यूजिबुहू, और अगर आपकी बात मान लें कि ये जो जमान है ये मिल्कियत को साबित करता है, पीछे आया था ना अन्नहु ज़मानु क़त्लिन फला यूजिबुल मिल्का, ये मिल्कियत को साबित ही नहीं करता, और वलौ काना यूजिबुहु, और अगर हम आपकी बात मान लें कि ये मिल्कियत को साबित करता है यानी ये जमाने कीमत है, तो फइन्नमा यूजिबुहु फिल ऐनी, तो ये तो मिल्कियत को साबित करेगा उस जात के अंदर, जात का मालिक बनेगा, सिफात का मालिक तो नहीं, सिफात तो पहले ही गुजर चुकी हैं यानी मुनाफिया तो पहले ही गुजर चुके हैं भाई। तवज्जो से सुनो भाई, तो कहते हैं फई नमा यू जिबू फिल आईनी, तो ये दो मिल्कियत को उस बांदी की जात में साबित करेगा, कमाफी हिबतिल मसरूखी, जैसे चोरी शुदा माल के हिबा के अंदर, अगर मालिक उस चोर को अपना चोरी किया हुआ माल हिबा कर दे तो देखो वहां मिल्कियत उस ऐन के अंदर आ गई, उस ऐन के अंदर आ गए। तो कहते हैं कमाफी ही बतिल मसरूकी, जैसे चोरी शुदा माल के हिबा करने के अंदर जात के अंदर ही मिल्कियत आ जाती है, लाफी मनाफी अलबुजई, तो ये बांदी की जात में मिल्कियत आएगी, लाफी मनाफी अलबुजई, बुजा के मनाफे के अंदर तो मिल्कियत नहीं आई, लिअन्नहस्तूफियत, इसलिए क्योंकि वो मुनाफा तो वसूल हो चुके हैं, यानी उससे पहले ही जिना वो कर चुका है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहस्तूफियत, इसलिए क्योंकि वो मुनाफा तो वसूल हो चुके हैं, वल मिल्कु यसबुतु मुस्तनिदन, और ये मिल्कियत साबित होगी मनसूब होकर, यानी जिस वक्त बांदी हलाक हुई थी उस वक्त से ये मालिक है, लेकिन उस हलाकत से भी पहले ये मुनाफा वसूल कर चुका है, यानी जिना कर चुका है। तो कहते हैं वल मिल्कु यसबुतु मुस्तनिदन, और ये मिल्कियत जो है मनसूब होकर साबित होगी, फला यजहर फिल मुस्तौफा, लिहाजा ये मिल्कियत जाहिर नहीं होगी उन मुनाफा के हक में, अल मुस्तौफा जो पहले ही वसूल किए जा चुके हैं, लिकौनिहा मादूम मतन, इसलिए क्योंकि वह मादूम हो चुके हैं, क्योंकि सिफात में तजद्दुद आता है, हर हर लम्हे में नई सिफत आ रही है, तो गुजश्ता सिफत गुजरती जा रही है, तो यहां पर भी बांदी के जो मुनाफा हैं वो गुजरते चले जा रहे हैं, तो जिस वक्त ये मालिक बना उस वक्त तो वो मुनाफा जो ये वसूल कर चुका था वो तो मादूम हो चुके हैं, वो तो गुजर चुके हैं भाई जी। ये माना है लिकौनिहा मादूमतन, इस वजह से कि वो मादूम हो चुके हैं। वहां दा बिखिलाफ मा इदाजा ना बिहा, और ये मसला बरखिलाफ है उसके कि जब एक शख्स ने एक बांदी से जिना किया, फाजहा बाईनहा, तो ये उसकी आंख ले गया। आंख से मुराद बीनाई है, यानी उसकी बीनाई ही खत्म हो गई, बांदी ही अंधी हो गई। वजह यह कि आगे जिक्र आ रहा है इसी सतर में, लिअन्न अल-मिल्का हुनालिका यसबुतु फिल जुस्सतिल अमिया, जुस्सा जिस्म, अमिया अंधा, अंधे जिस्म के अंदर मिल्कियत आ रही है भाई, बांदी के साथ जिना किया और उसको अंधा कर दिया, तो इस सूरत के अंदर अब ये कीमत देगा और बांदी का ये मालिक बन जाएगा जी। तो मिल्कियत आ रही है अंधी बांदी के अंदर, तो बांदी मौजूद तो है, जबकि पिछले मसले में तो बांदी ही मर चुकी है जी। तवज्जो है, लिहाजा इस मसले के अंदर भी, तवज्जो से सुनो, इस मसले के अंदर भी इसने बांदी से जिना किया और बांदी को अंधा कर दिया, तो अब ये बांदी की कीमत देगा और ये मालिक बन जाएगा, लेकिन मालिक होने की निस्बत उस वक्त की तरफ करेंगे जब इसने बांदी को अंधा किया था, और अंधा करने से पहले ही ये तो जिना कर चुका है, मुनाफे वसूल कर चुका है, हद साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी बांदी तो मौजूद है, जिंदा तो है, तो लिहाजा जब ऐन बाकी है तो ऐन के ताबे करते हुए हम मुनाफा को भी बाकी शुमार करेंगे, और यूं समझेंगे कि उस उन मुनाफा का भी ये मालिक हो गया, जब उन मुनाफा का भी मालिक हो गया तो फिर अब इस पर हद नहीं आएगी, ये मुनाफे के वक्त ही बांदी का मालिक था जी। या यूं कहो वो मुनाफा भी इसी के ममलूका थे जी। भाई वो मुनाफे कैसे इसके ममलूका हो सकते हैं, वो मुनाफे यानी वो जिना तो पहले हुआ है और मालिक बाद में बन रहा है। तवज्जो है भाई, जमान तो ये इस वक्त दे रहा है, लेकिन इस मालिक होने की निस्बत उस अंधे होने के वक्त की तरफ की जाएगी, तो अंधे होने के वक्त ये मालिक बन रहा है, लेकिन जिना तो उससे पहले ये कर चुका है, मुनाफे तो उससे पहले वसूल हो चुके हैं, तो फिर यहां आप कैसे कहते हैं कि वो मुनाफे इसके ममलूक थे, लिहाजा इस पर हद नहीं आएगी। शुबा आ गया कि मुनाफे इसके ममलूक थे, लिहाजा हद नहीं आएगा। कहते हैं भाई दोनों मसलों में फर्क है, पिछले मसले के अंदर बांदी हलाक हो चुकी है, जब ऐन हलाक हो चुकी है तो जब ऐन में बका नहीं तो वहां ऐन के ताबे रखते हुए मुनाफे के बका का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहां पर यह बांदी अंधी हुई है लेकिन है तो जिंदा, तो जब ऐन के अंदर बका है तो इस ऐन के ताबे करते हुए मुनाफे के अंदर भी बका मान ली जाएगी। ये यूं कहो कि दोनों में फर्क है, वहां पर वहां पहले मसले में वो बांदी हलाक हो चुकी है, तो जब बांदी हलाक हो चुकी है तो वहां पर बांदी के ताबे करके भी हम मुनाफे का मालिक इसको करार नहीं दे सकते, जबकि यहां पर बांदी जिंदा है, अगरचे अंधी हो गई है लेकिन जिंदा तो है, तो बांदी है असल और मुनाफे हैं उसके ताबे, तो जब हम बांदी का मालिक करार दे रहे हैं तो ऐन के ताबे करते हुए मुनाफे का भी हम इसी को मालिक करार दे देंगे, जब ये उन मुनाफे का भी मालिक है तो ये जिना नहीं, ये अपनी बांदी से इसने वती की है, तो जब जिना नहीं तो इस पर हद भी नहीं आएगी। फर्क समझ में आया, एक मसले में बांदी हलाक हो चुकी है तो वहां जब ऐन ही बाकी नहीं जब ऐन के अंदर ही मिल्कियत नहीं आ सकती तो मुनाफे में भी मिल्कियत नहीं आ सकती। और यहां पर जब ऐन बाकी है, ऐन के अंदर मिल्कियत आ रही है, तो ऐन के ताबे करते हुए मुनाफे के अंदर भी हम मिल्कियत साबित कर देंगे। तो कहते हैं वहादा बिखिलाफी मा ईदा जना बिहा, और यह मसला बरखिलाफ है उस सूरत के जब इस शख्स ने इस बांदी से जिना किया, फअज़हब ऐनहा, तो यह उसकी बीनाई ले गया, यानी इसने इसकी बीनाई खत्म कर दी। तो ऐन का क्या माना किया मैंने, बीनाई, जबकि हिदाया के बाज़ नुस्खों में यहां तस्निया है, फअज़हब ऐनहा, भाई वो उसकी दोनों आंखें ले गया, तो फिर बीनाई का माना करने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जब दोनों आंखें चली गई मालूम है दोनों आंखों की बीनाई खत्म हो गई। फअज़हब ऐनहा, तो ये इसकी बीनाई ले गया, यानी इसने उसकी बीनाई खत्म कर दी। यजिबु अलैहि क़ीमतुहा, तो इस शख्स पर उस बांदी की कीमत वाजिब होगी। वयस्कुतुल हद, और हद साकित हो जाएगी। लिअन्नल मिल्क हुनालिक यस्बुतु, इसलिए क्योंकि मिल्कियत जो है यहां पर साबित हो रही है। फिर जुस्सतिल अमिया, अंधे जिस्म के अंदर, वही ऐनुन, और ये अंधा जिस्म ये तो जात है, ये तो सिफत और मुनाफिअ नहीं है, वही ऐनुन और ये तो जात है। फअवरसत शुबहतन, तो इसने शुबा पैदा कर दिया कि जब ये जात का मालिक है तो शुबा आया कि ये मुनाफे का भी मालिक है भाई, तो इसलिए हद साकित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, काल वकुल्लु शैइन सनअहुल इमामुल लदी लैसा फौकहु इमामुन फला हद्द अलैहि इल्लल क़िसास। भाई अब वो पांचवीं शर्त का बयान आ गया। इजराए हद के लिए पांच शर्तें थी। पहली शर्त कि दारुल इस्लाम हो, दूसरी शर्त कि वो जिना करने वाला मुकल्लफ हो, तीसरी शर्त कि वो रजामंदी से जिना करे, और चौथी शर्त के दोनों इसके जिना होने पर इत्तेफाक करें, और पांचवीं शर्त यह कि हद कायम करने वाला इमाम हो, यानी खलीफतुल मुस्लिमीन हो। अब उसको बयान करने लगे हैं। तो कहते हैं قال وكل شيء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلا حد عليه الا القصاص। भाई सूरत यह कि इमाम ने कोई ऐसा जुर्म कर लिया जिसकी वजह से इस पर हद वाजिब होती है, तो क्या इमाम पर भी हद वाजिब होगी या नहीं? कहते हैं नहीं, इमाम पर हद वाजिब नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हद वसूल करना खुद इमाम का काम है, और इस इमाम के ऊपर तो कोई और इमाम है नहीं जो इसे हद वसूल कर सके, लिहाजा इस पर हद वाजिब करने का कोई फायदा ही नहीं है। वसूल फिर कौन करेगा अगर आप वाजिब करार दे दें, और वसूल नहीं होती तो इसके वाजिब करने का फायदा नहीं है भाई। तो कहते हैं قال امام محمد رحمه الله جامع صغير में फरमाते हैं وكل شيء صنعه الامام, कि हर ऐसी चीज जिसको वो इमाम करे, الذي ليس فوقه امام, कि जिसके ऊपर कोई और इमाम नहीं, यानी कोई गवर्नर या काजी नहीं बल्कि खुद बादशाह या इमाम ऐसा करता है। तो कहते हैं वकुल्लु शैइन सनअहुल इमाम, और हर ऐसी चीज जिसको वो इमाम करे, अल्लज़ी लैसा फौकहु इमामुन, जिसके ऊपर कोई और इमाम नहीं है, फला हद्द अलैहि, तो उस पर हद नहीं है, इल्लल क़िसासु, सिवाय क़िसास के, हां अगर ये इमाम कत्ल करता है किसी को तो इससे क़िसास लिया जाएगा। तो कहते हैं इल्लल क़िसास, सिवाय क़िसास के, फ़इन्नहु युख़दु बिही वबिल अमवाली, इसलिए क्योंकि इमाम जो है वो माखूज होगा क़िसास के साथ भी, वबिल अमवाली और लोगों के माल के साथ भी। अगर इमाम किसी के माल गसब कर लेता है या किसी को कत्ल कर देता है आले कत्ल से, तो वहां उससे क़िसास लिया जा सकता है, और वो माल वाले उससे अपना हक वसूल कर सकते हैं भाई। तो कहते हैं لأن الحدود حق الله تعالى, क्योंकि हुदूद जो हैं वो अल्लाह का हक हैं, व इकामतुहा इलैहि ला इला गैरिही, और इन हुदूद को कायम करना इस इमाम ही के सुपुर्द है, ला इला गैरिही, न कि इसके अलावा किसी और के, वला युमकिनहु अन युकीमा अला नफ्सिही, और इसके लिए तो मुमकिन नहीं है कि अपने ऊपर हद कायम करे, लिअन्नहु ला युफीदु, क्योंकि यह फायदा नहीं देगा, क्योंकि यह फायदा नहीं देगा कि इस पर हद को वाजिब करार दिया जाए, इसलिए क्योंकि हद का इजरा जो है यह जिल्लत और रुसवाई का बाइस है, हद जब किसी शख्स पर जारी की जाती है तो यह उसके लिए जिल्लत और रुस्वाई का बाइस है, तो कौन बादशाह जो है अपनी जिल्लत और रुस्वाई पर राजी होगा भाई? तो लिहाजा उस पर हद कायम नहीं की जा सकती। तो कहते हैं वला युमकिन हु अन युकीमा अला नफ्सिही, और यह उसके लिए मुमकिन नहीं है कि अपने ऊपर हद कायम करे, लिअन्नहु ला युफीदु, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह तो कायम ही नहीं करेगा जिल्लत और रुस्वाई की वजह से, लिहाजा इस पर यूं कहेंगे हद वाजिब ही नहीं है। हां, अगर किसास में किसी को कत्ल किया है तो यह हकुल अब्द है, या लोगों का माल इसने छीन लिया है तो यह हकुल अब्द है, तो यहां पर वो मकतूल के अवलिया या जो साहिबे माल है वो मुतालबा कर सकते हैं भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ हुकूक इबाद, बखिलाफ हुकूक इबाद के, लिअन्नहु यस्तौफी ही वलीयुल हक, इसलिए क्योंकि उसको वसूल करता है वलीयुल हक, हक वाला जो साहिब हक है वो इसको वसूल करता है, इम्मा बितमकीन ही, भाई किस तरह वसूल करेगा साहिब हक बादशाह से? कहते हैं इम्मा बितमकीन ही, या तो बादशाह के कुदरत देने से कि बादशाह उसको कुदरत दे कि मुझसे किसास ले लो या मुझसे नावाल माल वसूल कर लो और उनको अदायगी कर दे भाई। तो कहते हैं इम्मा बितमकीन ही, या तो उस बादशाह के कुदरत देने से, और बिल इस्तेआनति बिमनअतिल मुस्लिमीना, या मदद लेते हुए मुसलमानों के लश्कर से, मनाह कहते हैं लश्कर को भाई, और बिल इस्तेआनति बिमनअतिल मुस्लिमीना, या मुसलमानों के लश्कर से मदद मांगकर, वल किसास वल अमवाल मिनहा, और किसास और माल जो है मिनहा वो हुकूकुल इबाद में से हैं, हुकूकुल इबाद वसूल किए जा सकते हैं, तो ये किसास और लोगों के माल हुकूकुल इबाद में से हैं। वह अम्मा हद्दुल कज़्फ, और हद कज़्फ भाई, क्या बादशाह अगर किसी पर जिना का इल्जाम लगा दे तो क्या बादशाह पर हद कज़्फ जारी की जा सकती है? कहते हैं नहीं, हद कज़्फ जो है इसके अंदर बंदे का भी हक है, एक शख्स पर जिना का इल्जाम लगाया गया है तो उसका हक है, वो काजी से मुतालबा कर सकता है कि इस शख्स पर हद कज़्फ जारी की जाए। तो हद कज़फ जो है यह हकुल अब्द भी है और यह हकुल्लाह भी है, लेकिन इसके अंदर हकुल्लाह को गालिब करार दिया गया है, और हकुल्लाह जो है वो तो बादशाह से वसूल नहीं हो सकते, लिहाजा हद कज़फ भी बादशाह पर वाजिब नहीं होगी। तो कहते हैं वह अम्मा हद्दुल कज़्फ, और बाकी हद कज़फ जो है, कालू तो फुकहा फरमाते हैं अल मुगल्लबु फीही, गल्लब युगल्लिबु तगलीब का माना है गालिब करार देना। कहते हैं कालू फुकहा फरमाते हैं अल मुगल्लबु फीही कि हद कज़फ के अंदर गालिब करार दिया गया है हक शरई, हक शरीयत को, हद कज़फ के अंदर हक शरीयत को गालिब करार दिया गया है। फहुक्मुहु का हुक्म साइरिल हुदूदिल्लती ही हकुल्लाहि ताला, तो इस हद का भी वही हुक्म है जैसे कि बाकी वो हुदूद जो अल्लाह का हक हैं, जैसे उनका हुक्म है, और बाकी वो हुदूद जो अल्लाह का हक हैं वो तो बादशाह पर वाजिब नहीं, तो हद कज़फ भी बादशाह पर वाजिब नहीं होगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं अम्मा हद्दुल कज़्फ, और बाकी हद कज़फ जो है, कालू फुकहा फरमाते हैं अल मुगल्लबु फीही हक़ुश शरई, तो उसके अंदर भी शरीयत के हक को गालिब करार दिया गया है। फहुक्मुहु, तो हद कज़फ का जो हुक्म है, का हुक्म साइरिल हुदूदी, इसका हुक्म भी उन बाकी हुदूद के हुक्म की तरह ही है, अल्लती हिय हक़ुल्लाह ताला, वो हुदूद जो अल्लाह का हक है, इसका हुक्म भी उन हुदूद की तरह है, और वो हुदूद तो बादशाह पर वाजिब नहीं, तो ये हद कज़फ भी बादशाह पर वाजिब नहीं होगी। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।